ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। कानून दोषियों के लिए भय और निर्दोष के लिए भरोसा होने की बात पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिया जोर। इस वर्ष का मॉनसून जेठ 18 से शुरू होकर 14 आश्विन तक रहने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान। आगामी वर्ष का बजट सभी क्षेत्रों को समेटने वाला होगा, अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले का कथन। और रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था और परंपराओं का पालन किए जाने पर जोर दिया है। कानून दिवस 2083 के अवसर पर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि कानून दोषियों के लिए भय तथा निर्दोषों के लिए आशा, भरोसा और सहारा होना चाहिए। राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल के संविधान की भावना और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नए कानूनों के निर्माण तथा प्रचलित कानूनों में सामूहिक सुधार करने पर जोर दिया। उन्होंने आधुनिक प्रणाली और तकनीक के उपयोग के माध्यम से आम नागरिकों की न्याय तक सहज पहुंच सुनिश्चित करने तथा मामलों के त्वरित व्यवस्थापन के जरिए शीघ्र न्याय प्रदान करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने विधि के शासन को कायम रखने और न्यायिक मूल्यों में गिरावट न आने देने के साथ न्यायपालिका के प्रति जनविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस वर्ष का मॉनसून आगामी जेठ 18 से शुरू होने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है। ये मॉनसून आगामी आश्विन 14 गति तक चलने की संभावना है। इस दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में औसत से कम वर्षा होने तथा अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश भर में औसत से अधिक रहने का पूर्वानुमान विभाग ने किया है। इसी बीच मॉनसून जन्य आपदा के जोखिम और क्षति को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने मॉनसून पूर्व तैयारी और प्रतिकार्य राष्ट्रीय कार्ययोजना को संशोधित कर लागू करने की तैयारी की है। ये जानकारी प्राधिकरण के निदेशक राम बहादुर केसी ने दी। इसी तरह मॉनसून जन्य आपदाओं से निपटने के लिए उपलब्ध स्रोत साधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए मौसम जन्य आपदा प्रतिकार्य की भी सभी पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। नेपाल पुलिस सहित सुरक्षा निकायों ने भी पूर्व तैयारी और प्रतिकार्य कार्यों को उच्च प्राथमिकता में रखकर काम शुरू कर दिया है। ये जानकारी पुलिस प्रवक्ता एवं डीआईजी अवि नारायण काफले ने दी। सरकार ने बाजार में व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्य वृद्धि और उपभोक्ता ठगी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सोमवार से देशभर विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय और उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से आम नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़े मूल्य वृद्धि की समस्या के समाधान के लिए मूल्य पारदर्शिता सप्ताह शुरू किया जा रहा है। ये जानकारी प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की प्रेस तथा अनुसंधान विशेषज्ञ दीपा दाहाल ने दी। उन्होंने बताया कि अभियान के क्रियान्वयन के लिए गृह मंत्रालय, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के कार्यालय और स्थानीय तहों को प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय द्वारा पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। आगामी जेठ 3 तक चलने वाले इस अभियान में सभी संबंधित निकायों, नागरिक समाज और मीडिया से सहयोग करने तथा बाजार में होने वाली अनियमितताओं पर निगरानी रखने की अपील भी की गई है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने आगामी आर्थिक वर्ष की नीति एवं कार्यक्रम तथा बजट निर्माण प्रक्रिया में आम नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुझाव संकलन पोर्टल संचालन में लाया है। परसों सोमवार को सार्वजनिक होने वाली नीति एवं कार्यक्रम में जनता की वास्तविक आवश्यकताओं और मौलिक अपेक्षाओं को समेटते हुए शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जनमुखी बनाने के उद्देश्य से ये सुझाव संकलन पोर्टल शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह की प्रेस तथा अनुसंधान विशेषज्ञ दीपा दाहाल ने जानकारी दी कि इस पोर्टल के माध्यम से देश विदेश में रह रहे सभी नेपाली नागरिक, विषय विशेषज्ञ और नीति निर्माता बजट निर्माण तथा विकास की प्राथमिकताओं से संबंधित अपने महत्वपूर्ण सुझाव सीधे सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसदों का दो दिवसीय संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण आज से शुरू हुआ है। सक्षम सांसद सशक्त संसद के नारे के साथ कल तक सांसदों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ललितपुर के जावला खेल में आज से शुरू हुए इस प्रशिक्षण में पार्टी पदाधिकारियों सहित सांसद सहभागी हैं। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा है कि राष्ट्रीयता के मुद्दों पर सरकार को पार्टी का साथ और सहयोग रहेगा। पार्टी की केंद्रीय नीति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा आज धनगढ़ी में आयोजित प्रादेशिक बैठक में सभापति थापा ने कहा कि शासन और अर्थतंत्र में सुधार तथा राष्ट्रीय हित के विषयों पर सरकार को पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन लोकतंत्र के आधारभूत पक्षों पर होने वाले गलत कार्य स्वीकार्य नहीं होंगे। सभापति थापा ने नेता और कार्यकर्ताओं को पराजित मानसिकता छोड़कर अपनी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार संगठन के काम में जुटने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को असहयोग करने वाले नेता और कार्यकर्ताओं को कुछ समय तक जिम्मेदारियों से बाहर रखा जाएगा। पार्टी के उपसभापति विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा है कि अब नई ऊर्जा के साथ पार्टी को संभालते हुए आगे बढ़ने का समय आ गया है। महामंत्री गुरुराज घिमिरे ने कहा कि पार्टी के भीतर किसी के प्रति आग्रह या पूर्वाग्रह रखे बिना संगठन को एकीकृत और मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के ज्ञान और इल्म से नई पीढ़ी को लाभ लेना चाहिए। मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा आज काठमांडू में आयोजित ज्येष्ठ नागरिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने ये बात कही। उन्होंने दीर्घकालीन सोच के साथ परिपक्व नीति और व्यावहारिक कार्य योजना बनाकर कदम उठाने का सरकार सहित सभी को सुझाव दिया। आने वाले सोमवार से सरकारी कार्यालय में राष्ट्रीय साफ सफाई सप्ताह संचालित होगा। सरकार अगले सोमवार से जेठ 1 गते तक संघ प्रदेशों और स्थानीय तहों के सभी कार्यालयों में साफ सफाई सप्ताह शुरू करने जा रही है। इसके लिए साफ सफाई सप्ताह संचालन संबंधी मार्ग निर्देशन 2083 जारी किया गया है। ये जानकारी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के शाखा अधिकृत सुवर्ण वज्राचार्य ने दी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के राजनीतिक सलाहकार असीम शाह और नेपाल के लिए सऊदी अरब के राजदूत फहद मोहम्मद आजमी मिनिकीर ने आज मक्का प्रस्थान करने वाले हज यात्रियों की विदाई की। चितवन में एम्बुलेंस सेवा को व्यवस्थित मर्यादित और पारदर्शी बनाने के लिए एम्बुलेंस में GPS लगाना अनिवार्य किया गया है। जिला एम्बुलेंस व्यवस्थापन समिति की आज हुई बैठक ने एम्बुलेंस सेवा के प्रबंधन पारदर्शिता और प्रभावशीलता में सुधार करने तथा सेवा संचालन में देखी गई विकृतियों को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य रूप से GPS लगाने का निर्णय किया है। प्रमुख जिला अधिकारी गणेश अर्याल ने बताया कि बैठक ने जिले भर में संचालित सभी एम्बुलेंसों को 7 दिनों के भीतर जनस्वास्थ्य कार्यालय में एकीकृत तथ्यांक विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज कराने और 15 दिनों के भीतर GPS प्रणाली लगाने का निर्देश दिया गया है। समिति ने कहा है कि वितरण विवरण दर्ज न कराने और GPS न लगाने वाले एम्बुलेंसों के संचालक पर रोक लगाई जाएगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन का युद्ध विराम हुआ है। उनके मुताबिक 9 से 11 मई तक दोनों देशों के बीच सीजफायर रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि इस युद्ध विराम के दौरान दोनों देशों से हजार कैदियों की अदला बदली भी होगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये लंबे जानलेवा और मुश्किल युद्ध के अंत की शुरुआत है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा संघर्ष है, इसको खत्म करने पर बातचीत जारी है। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच हाल के हमलों से तनातनी बढ़ गई है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने जवाबी हमला किया था, जबकि ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। अब मौसम, अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कानून दोषियों के लिए भय और निर्दोषों के लिए भरोसा होने की बात पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिया जोर। इस वर्ष का मॉनसून जेठ 18 गति से शुरू होकर 14 आश्विन तक रहने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान। और रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।